ओम शांति। कैसे हैं आप सब आज? बहुत अच्छे हैं। यहाँ के परिसर, यहाँ का वातावरण, यहाँ के वाइब्रेशंस अच्छा लग रहा है ना? तो यहाँ से भरपूर होके आप जाएंगे, लेकिन यहाँ जिस रीति से वातावरण, यहाँ वाइब्रेशंस पावरफुल है, किस आधार से है आप सबको पता है, मेडिटेशन के कारण से है। ऐसे वातावरण आप अपने घर में भी बना सकते हैं, ऐसे वातावरण। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस जो यहाँ करते हैं तो वो आप करना सीख सकते हैं, और बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत सहज है। और आप हर रोज सुबह आप सीख ही रहे हैं मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कैसे करना है। तो आज हम मेडिटेशन की थर्ड स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप था जो पहले दिन आप सबने सीखा और समझा, वो था क्या था? आत्मा का परिचय, खुद का परिचय। मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या है, मेरा रूप क्या है, मेरी शक्तियाँ क्या है, तो वो सब कुछ आप सबने समझा। सेकेंड दिन जो कल था, उस दिन के क्या समझा आपने? परमात्मा का यथार्थ परिचय, जो इतना कुछ कंफ्यूजन था परमात्मा के बारे में। और परमात्मा का परिचय तो बहुत सिंपल है। क्या है सिंपल? परमात्मा का परिचय क्या समझा कल? परमात्मा कौन है? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है ना? इतना कुछ मत मतांतरे हैं, बहुत सारी बातें हैं, इसको कंसाइज करके एक ही तरफ हम फोकस करें। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। भले अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग रूप से वो पुकारते, चाहे शिव कहे, चाहे अल्लाह कहे, चाहे लाइट कहे, नूर कहे, तो सब एक ही के तरफ इशारा कर रहे हैं, वो परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप। और उनके जो गुण और शक्तियां हैं वो बेहद है, अनगिनत है। और जैसे परमात्मा ज्योति है, ऐसे आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए कहते हैं ना, सन शोज फादर। जैसे परमात्मा ज्योति है, ऐसे हम उनके संतान, हम भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। ये दो बातें तो स्पष्ट हो गया। और तीसरी बात आज जो हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो है कनेक्शन, हम कैसे जोड़े, है ना? तो दूसरे जो एक्टिविटीज करना बहुत अच्छा लगता है और उसमें हमें एकाग्र बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन फिर जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हम मन और बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाते, मन कहीं ना कहीं भटकता है और कनेक्शन नहीं जोड़ पाते हैं। वो कारण क्यों, क्या है, और हम कनेक्शन कैसे जोड़े, तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो योग शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि अभी जो हम मेडिटेशन करते हैं इसका नाम है राजयोग, है ना? आप सबने समझा होगा ये राजयोग है। योग शब्द का अर्थ है कनेक्शन, यूनियन, मिलन, है ना? वियोग शब्द का अर्थ है अलग होना, सेपरेट हो जाना, बिछड़ना, वियोग है। योग माना कनेक्शन, कम्युनियन या फिर मीटिंग, है ना? तो अलग अलग रीति से वो मिलन हो सकता है योग। और इस योग से ना अलग अलग प्रकार के योग है, तीन लेवल का योग। ये फिजिकल योग है, जो दो चीजें जो मिल जाते हैं, जैसे दूध में जब हम शक्कर को मिलाते हैं, वो दो चीजों का मिलन हो गया, उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता, मिल गया ना दोनों, दूध और शक्कर दोनों मिल गए। ये फिजिकल लेवल का योग, दो चीजों का योग है। और दूसरा है जैसे रेडियो ट्यून करते हैं, फ्रीक्वेंसी, वो भी एक प्रकार से ट्यून हो गया, मिलना हो गया। और दो वायर जो इलेक्ट्रिक वायर्स है, तो इंसुलेशन को निकाल करके कॉपर वायर्स को कनेक्ट कर दिया, वो भी कनेक्शन जुड़ गया, ये सारी चीजें फिजिकल हो गया। और मेंटल क्या है, मन के द्वारा जब हम किसी को भी याद करते हैं, है ना, किसको भी याद किया तो वो उसका फोन आ गया, है ना, तो लगता है कि हमारा कनेक्शन अच्छा है, हमारा योग है, तो कहते हैं हमारा योग था तो इसलिए मिले, है ना, शादी होता है या फिर जो भी कनेक्शन जुड़ता है लोगों के साथ, तो कहते हैं योग था तो इसीलिए ये कनेक्शन जुड़ा। तो मैंने योग मतलब मेंटल रीति से जो योग है, किसी को भी हम याद करते हैं कनेक्शन जुड़ जाता है, और ये इसको हम योग कहते हैं। और तीसरा लेवल और बहुत सुपीरियर लेवल का जो योग है वो है परमात्मा के साथ कनेक्शन, है ना, वस्तु के साथ कनेक्शन कर लिया, व्यक्ति के साथ कनेक्शन जोड़ दिया, तो उससे कुछ फायदा नुकसान भी हो सकता है। वस्तु के साथ कनेक्शन जोड़ने से हमें खुद को कुछ लाभ नहीं है, कार को याद किया, मकान को याद किया, जो नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसको याद किया, हम वाइब्रेशन उसको देते हैं लेकिन वहां से मुझे हमें कुछ मिलता नहीं है। लेकिन इंसान के साथ जब हमारा कनेक्शन जुड़ता है, अगर वो इंसान हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी लेवल अगर हायर है तो मुझे लाभ मिलेगा, है ना, लेकिन उनके वाइब्रेशन लोअर लेवल है तो और ही मेरा एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है। तो इसीलिए इंसान के साथ कनेक्शन जोड़ने से कभी लाभ और कभी नुकसान हो सकता है, लेकिन परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने से हमेशा लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि परमात्मा की जो फ्रीक्वेंसी है, परमात्मा की जो एनर्जी लेवल है, हमेशा हायर लेवल है, हमेशा बेहद है, हमेशा वो शक्तिशाली है। तो इसीलिए परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है। हम कभी कभी सोचते हैं ना, कर्म ही सब कुछ है, तो अच्छा कर्म करते चलो तो परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत है, परमात्मा को के साथ कनेक्शन जोड़ने की क्या जरूरत है, आप क्या कहेंगे, कर्म अच्छा करते चलो, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने की आवश्यकता क्या है, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसके लिए। हाँ, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा कर्म करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा कर्म करने के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूं लेकिन सच बोलने की ताकत नहीं है मेरे अंदर। वो ताकत कहाँ आएगा, कहां से आएगा, शक्ति कहां से आएगी, गलत क्या है सही क्या है मेजॉरिटी हमको पता है, क्या नहीं करना है क्या करना है मेजॉरिटी हम सबको पता है, लेकिन पता होते हुए भी हम सही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा के अंदर शक्ति की कमी है। तो अच्छा कर्म करने के लिए भी हमें शक्ति कहां से मिलेगा, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से वह आत्मा शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, तो बैटरी जब डिस्चार्ज होता है तो फिर मोबाइल कनेक्ट करते हैं ना आप मेन पावर सप्लाई के साथ, तो ऐसे आत्मा रूपी बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाता है, एकमात्र उपाय है आत्मा को चार्ज करने का तरीका है परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने से ही आत्मा रिचार्ज हो सकती है। तो इसीलिए इस योग के द्वारा जो कनेक्शन हम परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, इस योग के द्वारा हम अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम राजयोग पड़ा, है ना। तो योग करने से बहुत सारी बातें मिलेगी, मन की शांति होगी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेन लक्ष्य जो योग करने का लक्ष्य ये है, अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य करना, जो बोलना चाहे वही बोले, जो सुनना चाहे वही सुने, जो देखना चाहे वही देखे, जो सोचना चाहे वही सोचे, क्या कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सकते हैं। दूसरों को सजेशन देना बहुत इजी है, भाई आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, एडवाइस देना, सजेशन देना बहुत इजी है, लेकिन खुद को कंट्रोल में रखना, बोलने के बाद पछताते, अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो वो फिर कर्म कर लेने के बाद पछताने से क्या होगा। तो इसीलिए इस राज्ययोग के द्वारा हम अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका आधार क्या है। हम जब योग करते हैं तो परमात्मा को याद करना मुश्किल क्यों लगता है, लेकिन इंसानों को और व्यक्ति को और वस्तु को याद करना इजी क्यों लगता है, ये समझना जरूरी है कि मन कहाँ कहाँ जाता है, मन किस किस चीज को याद करता है, क्योंकि राजयोग जो योग है मन की ही विधि है ना, मन से याद करना, इसको योग कहा। योग बहुत बड़ी बात नहीं है, योग का अर्थ है याद, परमात्मा को याद करना इसको योग कहते हैं, है ना। तो फिर मन कहाँ कहाँ जाता है उसको समझना जरूरी है। तो कहाँ कहाँ जाता है, किस किस को याद करती है मन, विचार करते हैं, याद किस किस को करते हैं, जिनसे मिले हुए हैं, जिनको जानते हैं। स्ट्रेंजर को तो आप याद नहीं करेंगे ना, अजनबी व्यक्ति को आप याद नहीं करेंगे, परिचय होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है जिस व्यक्ति का इंट्रोडक्शन है, जिस व्यक्ति का परिचय है, उसी को आप याद करेंगे, जिसका परिचय ही नहीं है वो आप याद नहीं कर सकते हैं। और परमात्मा के लिए भी इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है, परमात्मा कौन है क्या है, तो उनका इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी हम याद कर सकते हैं परमात्मा को। और दूसरी बात है संबंध, जिस व्यक्ति के साथ मेरा कनेक्शन है, मेरा संबंध है, मेरा रिलेशनशिप है, उसी को हम याद करते हैं, दूसरे व्यक्ति को हम याद नहीं। सेकंड लेवल है ना। थर्ड लेवल है जिस व्यक्ति के प्रति मेरा प्यार है, और ही गहरा, रिलेशंस बहुत होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, रिलेटिव्स में भी एक या दो लोगों, फ्रेंड्स में से भी दो चार लोग खास होंगे, है ना। तो दो चार लोग खास क्यों हैं, उनका वाइब्रेशन, उनके जो सोच है मेरे सोच के साथ मिलता है, उनके प्रति ज्यादा प्यार है, तो इसीलिए उनको मैं ज्यादा याद करती हूँ, है ना। और चौथा लेवल है जिनसे मुझे प्राप्ति है, कुछ मिल रहा होगा तो उनको मैं बहुत याद करती हूँ, कुछ बेनिफिट होगा, कुछ लाभ होगा तो मैं याद करती हूँ। ये चारों ही लेवल डीपर होता जाता, जैसे सबसे पहला लेवल है परिचय, सेकंड लेवल है संबंध, और ही संबंध गहरा हुआ, प्यार बढ़ा, स्नेह बढ़ा, और फिर लास्ट में हम प्राप्ति की अनुभूति करते हैं। तो अगर इन चारों ही लेवल्स को परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हुए हम देखेंगे तो क्या समझ में आता है। परिचय तो मिल गया कल, और सेकंड लेवल जो है, जो संबंध, जैसे बहन ने कहा, जब कीर्तन करते भजन करते तो कहते आए हैं आप मात पिता बंधु सखा सब आप है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या परमात्मा को माता पिता मान करके चल रहे हैं? केवल जब पूजा करते हैं तब तक सीमित है या फिर जीवन में भी वो लागू है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं है ना? तो अभी वो लागू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन कहाँ जाता है? मन जिनके साथ संबंध है वहीं जाएगा, है ना? परमात्मा के साथ जब तक संबंध नहीं जोड़ते हैं तब तक मन सहज रूप से वहां नहीं जाएगा। मेहनत करना पड़ता है, जैसे संबंध में मेहनत करना पड़ता है। आप यहाँ आए, दो चार लोगों से मिले और एक दो महीने के बाद फिर याद आएगा, अरे उस व्यक्ति से मिले थे, उनका नाम क्या था? मेहनत करना पड़ता है जब तक केवल परिचय है। संबंध जब जुड़ जाता है सहज हो जाता है याद करना, क्योंकि वह एनर्जी फ्लो होता है, राइट? तो इसीलिए संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। और दूसरा कारण यह है, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना क्यों जरूरी है? संबंध जोड़ने से हमारे फीलिंग्स जुड़ जाती है। जब फीलिंग्स जुड़ जाती है फिर और गहरा हो जाता है हमारा, हमारी याद या हमारी कनेक्शन। जैसे रास्ते चलते किसी का भी एक्सीडेंट हो गया तो इंसानियत के नाते थोड़ा बहुत मदद कर लिया और चल पड़े, और बाद में तो हम भूल भी जाते हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रेंजर्स थे, दोनों अजनबी थे, तो हम चल बाद में याद ही नहीं रहा। लेकिन अगर उन दोनों में से एक मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है तो बहुत मदद भी कर लिया, लेकिन बाद में भी उनको पूछते रहे कि ठीक है नहीं है क्या है, तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा फीलिंग्स जुड़ा हुआ है रिलेशनशिप के कारण से, संबंध के कारण से फीलिंग्स जुड़े हुए हैं। जहां संबंध है वहां फीलिंग्स है, है ना? और फीलिंग्स के साथ परमात्मा को के साथ कनेक्शन जोड़ना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? वर्तमान समय जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, अभी हम देखते हैं भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन बहुत बहुत महसूस होता है। 10-20 साल पहले या 30 साल पहले जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, फिर भी अच्छी तरह हम एडजस्ट करके चलते थे लोग, है ना? लेकिन अभी कैप्सूल फैमिलीज होने के बावजूद भी खुश नहीं है, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं नजर नहीं आता है, और कनेक्शन ना होने के कारण से कहीं ना कहीं हर मतलब मेजॉरिटी लोगों के अंदर को मन के संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स नजर आता है। एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, मन के कनेक्टेड जो भी ये बीमारियां हैं वो नजर आने लगा है। सुसाइडल टेंडेंसीज, सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन, जो फैमिली कनेक्शन जो था पहले, वो इमोशनल कनेक्शंस वो नजर नहीं आ रहा है, है ना? तो अभी मेरा इमोशनल कनेक्शन इंसान के साथ नहीं है तो फिर मैं ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, इसने मेरे को ये नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो उसको खुद को चाहिए तो वो कहाँ से मुझे देंगे, है ना? तो अभी ये सब कुछ चाहिए, इमोशंस चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, एंग्जाइटी कम करना है, डिप्रेशन कम करना है, मैं इंसान से मांग नहीं सकती हूँ, क्योंकि उस इंसान को खुद को चाहिए अभी, राइट? तो कलयुग के अंतिम समय में हर आत्मा की जो बैटरी है ना, कैसा है अभी? 100% है, 100% है, टिमटिमा रहा है, दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन, है ना? मानते हैं ना इस बात को, है ना? तो अगर मुझे इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, वो फीलिंग्स चाहिए, केवल परमात्मा, क्योंकि वो सागर है, वो अथाह है, अनलिमिटेड है, बेहद है। उनके साथ जब मैं संबंध जोड़ती हूँ, मैं अपने इमोशंस को हील कर सकती हूँ। जब इमोशंस को हील करूंगी, फिर इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, फिर ये जो भी मन के संबंधित जो भी बीमारियां हैं, वो कभी नहीं आ सकता है। इसीलिए संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। और एक एक संबंध का फ्लेवर अलग अलग है। पिता के साथ संबंध जोड़ने से जो फ्लेवर मिलता है या जो क्वालिटी मिलती है, माँ के संबंध से अलग, और बंधु सखा स्वामी वो अलग अलग है। तो इसीलिए सर्व संबंध से परमात्मा को याद करने का गायन है। पिता से क्या मिलता है, पिता से क्या मिलता है, शक्ति मिलती है, समाज में रिकॉग्निशन मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, है ना, मेनली शक्ति। हाँ, मेरे पिता है, सिक्योरिटी है, शक्ति है। तो परमात्मा को जब मैं पिता मानती हूँ, हम माने या ना माने वो है ही है ना? परमात्मा तो पिता है ही है, परमात्मा के एग्जिस्टेंस तो है ही है, और मैं उनके संतान हूँ, मैं आत्मा उनके संतान हूँ, वो तो है ही है, कि मैं मानू या मना मानू। जितना मैं मानती चलूं, वो मेरे लिए ही लाभ है। जितना मैं मानती चलूं और जितना मैं लेती चलूं, मेरे लिए ही वो लाभ है ना। तो पिता, जब परमात्मा को पिता मानते हैं, शक्ति की अनुभूति होती है। और परमात्मा को जब माँ के रूप में याद करते हैं, माँ से क्या मिलता है, माँ से क्या मिलता है, निस्वार्थ प्यार और शांति, निश्चिंतता, है ना। पर वो बच्चा माँ के गोद में जाकर के निश्चिंत रूप से वो सो सकता है, और कितनी भी गलती करके आए, माँ कभी नहीं कहेगी निकल जाओ, है ना, कि फिर भी उसको साफ करेगी करेगी, फिर शिक्षाएं देंगी, नहीं करना, प्यार से शिक्षाएं देंगी, फिर भी अपनाएगी, फिर भी वो रखेगी, फॉरगिव, क्षमा करके, प्यार दे करके उसको फिर ठीक करने की कोशिश करेगी, है ना। परमात्मा भी ऐसे हैं। मैं कितने भी गलतियां करूं, फिर परमात्मा के पास जाकर के मैं माफी मांगू, और फिर वही प्यार, वही निस्वार्थ प्रेम मुझ आत्मा को परमात्मा से मिलता है, और शक्ति मिलती है, ताकि फिर मैं वो गलती दोबारा ना दोहराऊं, है ना। परमात्मा को टीचर जब मानते हैं, ये साथ जो पांचे जो संबंध है वो मेन है, मात पिता, टीचर, सदगुरु, स्वामी, है ना। टीचर रूप के जब हम रूप से जब हम परमात्मा को याद करते हैं, ज्ञान का भंडार है वो, है ना, ज्ञान का सागर है, जानी जाननहार है। तो परमात्मा के साथ कनेक्शन टीचर के रूप में, टीचर और स्टूडेंट के रूप में जब हम जोड़ते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, स्थूल चीजों का नहीं, लेकिन आत्मा का, परमात्मा का, कर्म का, काल चक्र का, जो दूसरे इंसान हमें वो ज्ञान जो नहीं दे सकते हैं, ऐसा ज्ञान परमात्मा से मिलता है। और चौथा संबंध सद्गुरु, गुरुओं का भी गुरु सद्गुरु परमात्मा है। वो सद्गुरु के द्वारा हमें गति, सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता मिलता है। परमात्मा के अलावा कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकते हैं। मुक्ति माना, मुक्ति जी, सदगति माना, जो भी मेरा कनेक्शंस है, कर्म का हिसाब किताब है, सब चुकतू करके सबसे फ्री मैं कैसे हो सकती हूँ, केवल परमात्मा ही दे सकते, कोई इंसान उस रास्ते, वो रास्ते का रास्ता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो खुद सबसे निराले हैं, सबसे न्यारे हैं, कर्म के बंधन में नहीं आने के कारण से उनके अंदर ये ताकत है। तो इसीलिए इन मेनली ये संबंध जब जोड़ करके चलते हैं, परमात्मा को याद करना इजी हो जाता है, संबंध है ना। और संबंध बंधन कब बन जाता है? परमात्मा के साथ संबंध कभी बंधन नहीं बनता, लेकिन लोगों के साथ संबंध बंधन जब कब बन जाता है? जब दुख मिलना शुरू होता है, ऐसा लगता है कि उनसे मैं फ्री होकर के चलो, ये जैसे बंधन में बंध गए है ना, जहां से मुझे दुख मिल रहा है, जहां से मुझे अशांति मिल रही, जैसे लगता है कि मैं बंध गई हूं उसमें, जहां फ्रीडम नहीं है तो वहां बंधन लगता है। लेकिन परमात्मा के साथ बंधन नहीं, संबंध है, एक सकारात्मक कनेक्शन है, इसलिए हमेशा सुख ही सुख मिलता है। और वही संबंध फिर प्यार में जब बदल जाता है, प्यार और गहरा है, प्यार और गहरा है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन होना सिखाते, जैसे प्यार में जब मग्न हो गए हैं किसी के प्यार में, तो आसपास में कोई भी आए गए हमें पता नहीं चलता है ना, मग्न हो गए जैसे कौन। तो फिर उसके बाद चौथा लेवल जो है जिनसे प्राप्ति है, यहाँ प्राप्ति परमात्मा से तो अथाह है, लेकिन संसार में जिनसे प्राप्ति है वह स्वार्थ है। हाँ, इनसे मुझे कुछ मिलेगा तो इसीलिए उनको याद करो, कोई नहीं मिलेगा तो नहीं याद करना। अगर रास्ते चलते अगर कोई स्माइल करते है ना, तो डॉट लगने लगता है कि ये व्यक्ति मेरे वो स्माइल क्यों कर रहा है, शायद उसको कुछ चाहिए होगा, ये एक्स्ट्रा पोलाइट क्यों हो रहा है, एक्स्ट्रा स्वीट क्यों हो रहा है, अच्छा मस्का क्यों लगा रहा है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उसको कुछ चाहिए होगा। तो जहां मुझे कुछ चाहिए होता है इंसान से, तो वहां कुछ ना कुछ स्वार्थ कनेक्टेड है, कुछ चाहिए। तो यहां कोई स्वार्थ नहीं है, आत्मा के अंदर, आत्मा के जो गुण है, शक्तियां हैं, वो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ करके वो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू होता है। यहां मांगने की जरूरत नहीं होता, परमात्मा से मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे मंदिरों में जब जाते हैं करते हैं, तो मेजॉरिटी लोग मांगने के लिए आते हैं। जैसे मैं जब कॉलेज में पढ़ रही थी, तो जहाँ कॉलेज था मेरा बैंगलोर में, तो उसी गली के लास्ट में गणपति मंदिर था है ना। उस गणपति मंदिर में भीड़ कब लगती थी पता है? जब एग्जाम के टाइम होता था और रिजल्ट का टाइम होता था, सारे साल में भीड़ नहीं होती थी, मौज करते थे सभी स्टूडेंट्स, लेकिन फिर एग्जाम के टाइम पे और फिर रिजल्ट के टाइम पे, हे भगवान पास करा दो, इजी पेपर दिला दो, मैं 101 नारियल चढ़ा दूंगे, ये इतना दिया जले, इतना पैसा चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्लीज कर दो। तो ये क्या बार्गेन? हम भगवान को ब्राइब कर रहे हैं क्या? अगर मेरा फर्स्ट क्लास में पास हो गया तो मैं 1001 रुपया दूंगा, अगर पास नहीं होंगे तो नहीं देंगे। क्या मेरा 1001 रुपये की आवश्यकता है भगवान को? आवश्यकता है? आवश्यकता है, वो तो दाता है, और सो चीजों की तो जरूरत ही नहीं है उनको है ना, वो तो अथाह है। तो मेरा 1001 रुपये की जरूरत नहीं है उनको, मेरी ही लालच है ना कि मेरा ये पास करा दो तो मैं दूंगी। तो बचपन से ये सीखा है ना, तो इसलिए कहीं ना भगवान को भी हम रिश्वत देने की कोशिश करते हैं है ना, ये है बार्गेन है ना। तो परमात्मा तो मेरा पिता है, बिना मांगे ही देते थे है ना, तो वो लेकिन प्रोवाइडर मेरा संबंध ऐसा होना चाहिए बस। क्या मैं जीवन भर ये मान के चल रही हूं कि वो मेरा पिता है ना? अगर मेरा संबंध उस रीति से है तो बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है, यहां मांगने की जरूरत नहीं है। और जब मांगते हैं तो उनके पास जो है वही मिलेगा। और परमात्मा के पास क्या मिलता, क्या है परमात्मा के पास, क्या है? स्थूल चीजें नहीं है, सूक्ष्म चीजें हैं। सूक्ष्म चीजें क्या है? शक्ति है, प्यार है, ज्ञान है, गुण है, वो अथाह है, है ना? जो भी मुझे पाना है, मुझे कर्म में, अपने कर्म के द्वारा मुझे पाना है, लेकिन कर्म करने के लिए शक्ति परमात्मा से मुझे मिलता है। मेरा संबंध ठीक नहीं है, भगवान मेरा संबंध ठीक कर लो, ये होगा संबंध? परमात्मा संबंध ठीक करने आएंगे? नहीं, मुझे अपना कर्म सुधारना होगा, मेरा अपने जो व्यवहार है वो सुधारना होगा, लेकिन मार्गदर्शन परमात्मा से, वो गाइडेंस मिलता है। मेरी गलती क्या है, क्यों संबंध बिगड़ा है, मेरी गलती क्या है, मैं जब महसूस कर लूंगी, मैं जब अपने कर्म को बदलूंगी, मैं वो उसके लिए शक्ति मिलता है, तो फिर वो संबंध ऑटोमेटिकली ठीक होगा। परमात्मा से मदद मिलती है, लेकिन डायरेक्ट वो संबंध ठीक हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं। मैं जब कर्म को सुधारना शुरू करती हूँ, ऑटोमेटिकली सब कुछ प्राप्त होना शुरू होता है। ये समझ है ना? तो इसीलिए संबंध जोड़ने से परमात्मा के साथ डर नहीं रहेगा। फिर ये कभी श्राप न, कभी 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 लगता है ना, भगवान मुझे श्राप न दे दे। मैं अगर लगातार कुछ पूजा कर रही हूं, मैं पूजा करना छोड़ दूं, कहीं मुझे डर लगता है कि कोई श्राप न दे दे, ये ना कर दे, वो भगवान श्राप देंगे क्या? सोचने की बात है, परमात्मा क्या श्राप दे सकते हैं? वो तो प्यार का सागर है, करुणा का सागर है, दुख हरता सुख करता है, दुख को हरने वाला है, कभी भी वो श्राप नहीं दे सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को नहीं दे सकते, मन स्थूल रीति से भी माँ बाप अपने बच्चों, भले बच्चे कितने भी व्यवहार उनका गलत रहा, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को कभी श्राप नहीं दे। जब इंसान अपने बच्चों को श्राप नहीं दे सकते, तो परमात्मा श्राप कभी नहीं देंगे। तो इसलिए डर नहीं होना चाहिए परमात्मा की याद में। तो डर जहां रहेगा तो वो फिर दूर होना शुरू कर, डर से मैं याद करूं वो कनेक्शन नेगेटिव एनर्जी रहेगा। तो इसलिए डर कभी नहीं, तो इसलिए परमात्मा की याद से सिक्योर हम फील करते हैं। यहाँ योग में कन्वर्सेशन है, ये वार्तालाप है। जब पूजा करते हैं तो केवल प्रेयर में वन साइडेड है, यहाँ मेडिटेशन में टू साइडेड है। जब मैं बात करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ परमात्मा के बारे में, उनका रेस्पॉन्स मुझे मिलता है। जब प्रैक्टिस से पता चलता है कि वो फिर हाँ, परमात्मा से जवाब भी मिलता है, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं मिलता। ये कन्वर्सेशन वार्तालाप होता है मेडिटेशन में। तो इसीलिए परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। और थोड़े बहुत विधि हम देखेंगे। हम यहाँ योगा, क्योंकि योग शब्द सुनते ही लोगों को लगता है हठ योग है या एक्सरसाइज है या प्राणायाम है, तो वो भी करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है शरीर के लिए, है ना? शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत है। लेकिन यहाँ योग की परिभाषा मेडिटेशन के साथ है, मन के साथ है, मन से परमात्मा को याद करना, ये है मेडिटेशन। क्योंकि इस योग, हठ योग और प्राणायाम में कोई भी आत्मा और परमात्मा का जिक्र उसमें नहीं होता है। और यहाँ माला फेरना या कुछ भी ऐसी बात नहीं होता, क्योंकि माला जब फेरते हैं, जैसे कबीर दास जी ने बहुत सुंदर कहा कि माला फेरत हुए युग हुआ, गया ना मन का मेल रे, हाथ हाथ का मन का छोड़ के मन का फेर ले। इसका मतलब क्या है? मन हाथ का मन का फेर रहे हैं, और मंत्र जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बहुत अच्छी बात है, वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन प्रॉब्लम वहां क्या है कि फिजिकली मैं मुख से तो बोल रही हूँ, हाथ से तो माला फेर रही हूँ, क्या मन एकाग्र है परमात्मा में? केवल फिजिकल एक्टिविटीज से आत्मा को शक्ति नहीं मिलती है। भले फिजिकली करे, माला फेरे, ओम नमः, कोई भी जाप करे, लेकिन मन भी एकाग्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा को शक्ति चाहिए ना, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों को कनेक्शन जोड़ना परमात्मा के साथ बहुत जरूरी होता है। और मंत्र जाप केवल रिपीट करने की बात नहीं है, मंत्र माना मंत्रणा, मन को एडवाइस देना, मन को एक सही दिशा में ले जाना, ये सही अर्थ है मंत्र का। मंत्र जाप भले करे, लेकिन मन को एक दिशा देते हुए मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है, है ना? और कोई सोचते हैं क्या राजयोग सीखने से हमें घर बार छोड़ना होगा? घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ करते हुए, अपने परिवार के देखभाल करते हुए, कमाई करते हुए, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए इस राजयोग का अभ्यास आप कर सकते हैं, करना है। कर्म संन्यास यहाँ नहीं सिखाते हैं, कर्म योग यहाँ सिखाते हैं, है ना? अगर कर्म संन्यास करके अगर आप जंगल में बैठ करके परमात्मा को याद करने बैठे तो कर्म खींचता है, तो इसीलिए कर्म करते हुए परमात्मा को याद करना जरूरी है, क्योंकि तब पता चलता है कि मेरे अंदर क्रोध कितना है, लोभ कितना है, मोह कितना है, कर्म में आते ही पता चलेगा ना। कर्म का संन्यास करने से मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरे अंदर कमी कमजोरियां कितने हैं और विशेषताएं कितनी। जब मैं व्यवहार में आती हूँ, योग करते करते मुझे लगता है कि मुझे मेरे अंदर क्रोध नहीं है, लेकिन फिर जब ऐसे परिस्थिति आ गया, ऐसे घटना घट गई, या अचानक किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, अचानक मेरा क्रोध उभर आया, तो पता चलता है मैं पूर्ण रूप से क्रोध मुक्त नहीं हुआ। तो कर्म करते हुए ही पता चलेगा मेरे अंदर विशेषताएं कितने हैं और कितने कमी कमजोरियां, फिर मैं उसमें पुरुषार्थ कर सकती हूँ। तो इसलिए कहा जाता है कर्म संन्यास नहीं सिखाता है राजयोग, कर्म योग, कर्म करते हुए परमात्मा को याद करना सिखाते हैं। और यहाँ जैसे मैंने कहा, परमात्मा से पूछने के मांगने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली परमात्मा से मिलना शुरू होता है। और कौन इस राज्यों का अभ्यास करते? कोई भी व्यक्ति, इरेस्पेक्टिव कोई भी जेंडर, रिलीजन, एज, नेशन, जो भी है, कोई भी इस राज्यों का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक धर्म के साथ ये मेडिटेशन जुड़ा हुआ नहीं है। मेडिटेशन माना आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी, अपने आप को जानना, अपने आद्य को जानना और परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना। और बैठने के कैसे बैठे विधि हम सीखेंगे अभी। मैं आधार सीख देख लिया, किस आधार से परमात्मा को याद कर सकते, वो चार आधार हो गए ना, परिचय, संबंध, प्यार और प्राप्ति। चार आधार से परमात्मा को याद कर सकते, और विधि क्या है। अभी सबसे पहले फिजिकली हम देखते हैं बैठना कैसे है। कहीं भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठे, जमीन पर बैठे, कहीं भी बैठ सकते आराम से, क्योंकि कहीं भी अगर आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, अगर आपको कहे नहीं जमीन पर ही बैठना है, पद्मासन पर में ही बैठना है, तो फिर आप नहीं बैठ पाते हैं और दर्द होना शुरू होगा। जब दर्द होगा तो बुद्धि दर्द के तरह, अरे घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रही है, और तो परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कहीं भी बैठे, कंफर्टेबल बैठे, लेकिन अलर्ट होकर के बैठ सकते हैं। और जहां हम अपने आप को, बॉडी को जितना हम स्थिर रखते हैं, फिर उस रीति से हम मन को स्थिर रख सकते हैं। मेडिटेशन के बारे में कुछ भ्रांतियां क्या है। मेडिटेशन लगता है लोगों को कि मेडिटेशन माना मन को एकदम शून्य कर देना। मेडिटेशन का मतलब शून्य नहीं करना है, अमन नहीं करना है, एक डायरेक्शन देना है, मन को एक डायरेक्शन देना है। और मन को एकदम अमन तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं, कोई भी विचार उत्पन्न ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, मन का काम ही है विचारों को क्रिएट करना। तो इसलिए एकदम शून्य नहीं कर सकते, लेकिन चैनलाइज कर सकते हैं सही दिशा के तरफ। और मन को फोर्स भी नहीं करना, सहज रूप से उसको समझते हुए उसको डिविएट करने की जरूरत है। फोर्स नहीं सोचना, इसके बारे में नहीं सोचना, नहीं सोचना, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जितना हम फोर्स करेंगे ना, उसी तरफ वो मन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहे बंदर को बिल्कुल याद नहीं करना, तो बंदर के तरफ ही याद मना मन जाएगा। तो जैसे ही शब्द सुना, उसी के बारे में आप सोचना शुरू कर दिया। क्या नहीं सोचना है उसके बारे में नहीं सोचना है, लेकिन क्या सोचना है, क्या देखना है, तो उसके बारे में हमें सोचना। अब ये सोचूं कि क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, नहीं, तो उससे क्रोध कम नहीं होगा। उसके बजाय क्या सोचना है, उसका विपरीत जो है, अपोजिट क्या है, क्रोध का अपोजिट क्या है, शांति है। आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, आत्मा के जो निजी गुण है, वो है शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। जितना मैं इस चीज का अभ्यास मैं करती जाऊंगी, तो फिर ऑटोमेटिकली क्रोध निकलता जाएगा। इसलिए फोर्स नहीं करना है, आत्मा के जो निजी गुण है उसको रियलाइज करते हुए उसको अनुभव करते जाना है। और लगता है कि मैं बहुत फास्ट सोचती हूँ, तो इसीलिए मेडिटेशन नहीं कर सकती। मेडिटेशन करते करते वो जो गति है ना, धीरे धीरे वो कम होता शुरू हो जाएगा। और कुछ लोगों को लगता है कि जब वातावरण शांत होगा तभी मैं मेडिटेशन कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत शांति की जरूरत होगी, वातावरण जो, अगर एटमॉस्फेयर शांत है तो मैं एकाग्र कर पाऊंगी, लेकिन ये आदत नहीं बनानी है। जैसे सोचे कि रेड लाइट हो, शांत वातावरण हो, कमेंट्री भी चल रहा हो, तभी मैं मेडिटेशन कर सकती हूँ, ये परमानेंट आधार नहीं बनाना है। बिगिनर्स के लिए अच्छी बात है, थोड़ा मदद मिलता है बिगिनर्स के लिए शुरुआत में, लेकिन उसको आधार नहीं बनाना है। क्योंकि चलते चलते फिर कहीं भी मार्केट में बैठे हुए, कहीं भी ऑफिस में बैठे हुए, तभी भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसकी आदत हमें डालनी है। और नेक्स्ट बात है, लोगों को लगता है मेडिटेशन क्लोज्ड आई मेडिटेशन है, आंखों को बंद करके हमें मेडिटेशन करने की जरूरत है। यहां हम कहते हैं नहीं, आंख खोल करके आप मेडिटेशन करिए, अलग है ना? लगता है ये अलग है, क्यों ये करना जरूरी है? आंखों को खोल करके मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो जब आप आंख बंद करते हैं ना, तो फिर मन इजीली भाग सकता है। जैसे जब आंख खोल के रखे हैं, तो फिर यहाँ जो चल रहा है उसी के बारे में आप सोच रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, उसी के बारे में चिंतन चल रहा है। थोड़ा बहुत बीच बीच में जा भी रहा है, लेकिन आ जाता है मन वापस, क्योंकि आंख खोल के रखे और दिखाई दे रहा है कुछ, है ना, सुनाई दे रहा है कुछ। तो इसीलिए मन को फिर से ले आना इजी हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपने आंख बंद की तो क्या होगा, मन को एक फ्रीडम मिलता है इस कमरे से बाहर जाने की। मन को आंख बंद करते ही मन भाग सकता है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी विजुलाइज कर सकता है, वो फ्रीडम मिल जाता है। तो इसीलिए एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जैसे मैंने कहा, राजयोग माना कर्म योग है। कर्म संन्यास यहाँ नहीं सिखाते, कर्म योग सिखाते हैं। जब कर्म करते समय आप आंख बंद करके कर्म नहीं कर सकते, राइट? आंख बंद करके तो कर्म नहीं कर सकते, आप चल रहे कहीं जा रहे हैं, आंख बंद करके नहीं जा सकते, राइट? तो आंख खोल करके रखना बहुत जरूरी है। तो उस समय आप बुद्धि कहीं ज्यादा यूज नहीं हो रहा है तो परमात्मा को आप याद कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे आप कहीं बस में बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बुद्धि कहाँ यूज नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली आप बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना? लेकिन आंख को खोल करके रखना बहुत जरूरी है उस समय। तो इसीलिए आंख खोल करके भी मेडिटेशन करने की आदत जब हम डालते हैं तो कर्म योग भी करना इजी हो जाता है। लेकिन आंख खोल करके रखना माना इसका यही मतलब नहीं पूरा खोल करके रखे, लेकिन हाफ क्लोज्ड। जैसे योगियों का चित्र देखते हैं तो हाफ क्लोज्ड रहता है। हाफ क्लोज्ड का मतलब ये है कि मैं देख रही हूं, देखते हुए भी मेरा ध्यान नहीं है, है ना? जब आप इतने सोच में मग्न हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, इतने मग्न हो गए उसके बारे में सोचते हुए, कोई आया गया पता ही नहीं चला, और फिर कहते कि मैं तो आया था, आपने देखा भी, आंख खुले थे आपके, लेकिन फिर भी ना, फिर कहेंगे कि नहीं मेरा ध्यान नहीं गया। भले आप आए होंगे लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया। ध्यान कहाँ था? ध्यान कहाँ था? ध्यान उन विचारों में था, है ना? ये हम कर सकते हैं, है ना? ये आदत है आत्मा को, है ना? तो इसलिए आंख भले खुले रखे लेकिन फिर ध्यान पूरी तरह आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन के तरफ है तो फिर ये संभव हो सकता है, राइट? हाँ, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। आप आंख खोल करके ही रखना है। अब कभी आप अनकंफर्टेबल लग रहा है, एकाग्र नहीं कर पा, एकाग्रता नहीं हो रहा है, तो फिर आप थोड़े समय के लिए बंद कर लिया, फिर खोल दिया। लंबे काल के लिए बंद नहीं रखना है। सहज योग है या हार्ड एंड फास्ट कोई भी रूल्स नहीं है, ठीक है? और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है जब इन चार बातों को हम फॉलो करेंगे और बोर भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हम विधि को देखेंगे। सबसे पहली बात है कॉन्टेम्पलेशन या मनन चिंतन। जब मेडिटेशन में बैठते हैं सबसे पहला स्टेप है मनन चिंतन, और नेक्स्ट स्टेप है कनेक्शन या जोड़, और तीसरा स्टेप है एकाग्रता या कॉन्सेंट्रेशन, और चौथी बात है रियलाइजेशन। ये चार स्टेप्स हम मेडिटेशन में फॉलो करते हैं, है ना? ये चार स्टेप्स क्या है? मनन चिंतन माना जैसे ही मेडिटेशन में बैठे, शरीर को स्थिर कर लिया, फिर उसके बाद सोचना शुरू करते, जो भी मन भटका हुआ है इधर इधर सोच रहा है तो उसको लेकर के आत्मचिंतन के तरफ ले जाते हैं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, ब्रुकुटि के बीच में विराजमान हूँ। विड्रॉ करते स्वचिंतन आत्मचिंतन के तरफ ले जाना, इसको पहला स्टेप कहते हैं। फोकसिंग ऑन द इनर सेल्फ पॉइंट ऑफ लाइट, खुद की तरफ फोकस करना, जैसे पॉजिटिव एनर्जी है तो उसके ऊपर फोकस करना मनन चिंतन। विचारों को आधार बना करके स्वयं के तरफ ले जाना, यह पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना, और चार विधि हमने देखा, तो वो उस आधार से परमात्मा कौन है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, परम धाम निवासी है, तो मेरा संबंध क्या है, कनेक्शन क्या है, वो पिता है, माँ है, जो भी है कनेक्शन, तो वो कनेक्शन जोड़ना। और ये कनेक्शन जोड़ के, जैसे साइंस में कहते हैं ऑस्मोसिस, एक प्रोसेस होता है, और जो अगर आप रात को किशमिश भिगोते हैं पानी में, सुबह क्या होता है, वो किशमिश का जो मिठास है वो पानी में भी आया हुआ नजर आता है ना, पानी भी मीठा हो जाता है। जो डेंसिटी किशमिश के अंदर था, मिठास था, वो पानी में भी आ गया। तो इसलिए कहते हैं जो भी हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी के तरफ एनर्जी फ्लो होता है। जब परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, वो हायर डेंसिटी वाले, हायर एनर्जी वाले हैं, तो कनेक्शन जोड़ते ही हायर एनर्जी, मैं हमेशा लोअर एनर्जी में ही रहूंगी, परमात्मा से तो लोअर एनर्जी में है ना हम सभी, तो हायर एनर्जी के साथ कनेक्शन जोड़ने से वो एनर्जी मेरे अंदर फ्लो होना शुरू होता है ना, इसीलिए कनेक्शन जोड़ना जरूरी है। और तीसरी बात है एकाग्रता। एकाग्रता क्यों जरूरी है, क्योंकि आत्मा के अंदर कमी कमजोरी जो है उसको अगर भस्म करना है, उसको खत्म करना है, तो एकाग्रता बहुत जरूरी है। जैसे पेपर को धूप में रखा, सालों साल, हजारों साल रखा, तो भी वो जलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस रखा, तो फिर वो फोकल पॉइंट पर जब वो एनर्जी, वो सनलाइट कॉन्सेंट्रेट होता है, तो वहां पेपर जब रखते हैं तो वो जल जाता है। तो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति, जब मैं संबंध जब जोड़ा, कनेक्शन जोड़ा, तो मात पिता बंधु सखा बहुत अच्छे अच्छे विचार चल रहे, सब बहुत अच्छा कनेक्शन जुड़ रहा है, लेकिन थर्ड स्टेप क्या है, एक शक्ति, एक गुण या एक संबंध में टिक जाना। जैसा मैं ये सोचूं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, मैं उनके संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस विचार में अगर मैं थोड़ा एटलीस्ट दो चार मिनट स्थिर हो जाती हूं, तो फिर वो एनर्जी अब्सॉर्ब होता है। अब्सॉर्ब होने के कारण से आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं कि एक सेकंड में सोचा परमात्मा प्यार का सागर है, वो फिर नेक्स्ट विचार तुरंत आ गया कि वो सर्वशक्तिमान है, वो कृपा करुणा का सागर है। ये मैं गुण गाती जा रही हूँ, उनके गुणों के बारे में लिस्ट मैं बोलती जा रही हूँ, लेकिन किसी भी एक में टिक नहीं रही हूँ, तो अब्सॉर्ब नहीं होगा ना। तो अब्सॉर्ब करने के लिए मुझे दो चार मिनट उस विचार में टिकना बहुत जरूरी है। और फिर लास्ट है अनुभूति, अनुभव होना शुरू हो जाएगा, सचमुच मुझे आत्मा को शक्तियों की अनुभूति होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये चार स्टेप्स है ना, ये चार स्टेप्स कनेक्टेड है। जब तक परिचय है केवल चिंतन ही चलता रहेगा, लेकिन संबंध जोड़ा कनेक्शन जुड़ जाता है ना। प्यार, जहां प्यार है वहां एकाग्रता बढ़ जाता है, और फिर रियलाइजेशन, अनुभूति होना शुरू होगा। ठीक है, ये है आधार और विधि, मेडिटेशन करने की विधि। कोई क्वेश्चंस? इसके बाद हम अभ्यास करेंगे मेडिटेशन का, तो उसके पहले अगर कोई कुछ प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, ताकि फिर क्लारिफिकेशन मिले, फिर उसके आधार से फिर हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। हाँ, एक प्रश्न ये है कि अलग अलग जो विचार है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, जो भी हम लेते हैं, तो वो अभ्यास कर ले तो उसके बाद क्या, तो इसी को ना, बहुत सारी बातें हैं, पॉइंट्स, ये आपकी शुरुआत है ना। तो पहले 7 डेज कोर्स ले लेंगे, फिर धीरे धीरे हर रोज कुछ न कुछ परिस्थिति आपके जीवन में आता है, राइट, कुछ न कुछ चल रहा होगा जीवन के कनेक्टेड, कुछ ऐसे होगा तो उसके अनुरूप आप कनेक्शन जोड़ते हुए आप परमात्मा से उस पर्टिकुलर बात के लिए आप शक्ति ले सकते हैं, वो उसके सब वार्तालाप कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, है ना। केवल हम थियोरिटिकली न जाएं, अनुभव की बात है। केवल हमने सोच लिया कि ठीक है 3 मिनट मास्टर सर्वशक्तिमान के बारे में सोचा, समझा, अनुभव किया, फिर जो, लेकिन मैं कंप्लीटली मास्टर सर्वशक्तिमान हो गई आत्मा हुई तो नहीं ना। तो उसका अभ्यास, जितना हम अभ्यास करते जाएंगे उतना आत्मा भरपूर होती जाएगी। आध्यात्मिकता एक पढ़ाई है, राइट, हर रोज जितना हम करते जाएंगे उतना अनुभव होता जाएगा, उतना आत्मा भरपूर होती जाएगी, है ना। 2-4 दिन करके फिर छोड़ दिया तो वो फिर कुछ अनुभव हो गया लेकिन फिर गैप हो गया, फिर वहां जहां छोड़ा था वहां से फिर लेना शुरू करना पड़ेगा। तो अगर कंटिन्यूस रहेगा ना तो आप कुछ ना कुछ अनुभव जरूर कर सकते हैं, है ना। हाँ, संबंध भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। जी जी हाँ, जैसे जैसे मेडिटेशन करना शुरू करते हैं और कर्मों का हिसाब किताब भी चुप तो होना शुरू। हाँ जी, अब हाँ ऐसे बहुत सारे लोगों को है ना ये प्रॉब्लम है, आपके कारण से सबको उत्तर मिल रहा है उसका, है ना। और कुछ बोलना है? हाँ जी हाँ, कंट्रोल कैसे करें ना उसको, आप एक मिनट ये इसका उत्तर दे दो फिर आपका प्रश्न लूंगी, ठीक है। आपको अगर आपके बच्चे हैं, राइट, एक दो बच्चे, और बचपन से उन बच्चों को आपने खुली फ्रीडम दे दी, बेटा कुछ भी करना कर लो, फ्रीडम है। लेकिन 20 साल 25 साल के बाद आप कहोगे, फिर कंट्रोल करना शुरू करोगे उन बच्चों को, ये नहीं करो, वो मत करो, ये करना बुरी बात है, ये नहीं करो, तो वो कंट्रोल में आएंगे लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, मेहनत करना पड़ेगा इनके पीछे, मेहनत करेंगे तब जाकर के वो कंट्रोल में आएंगे, सही रास्ते पर आएंगे। मन को कंट्रोल कभी किया है आपने? आप 30 साल 40 साल हो गए होंगे ना अभी जीवन जीते हुए, 40 साल 50 साल कितने भी हुए हैं, इन 40-50 सालों में कभी मन को बोला तुमको यहां नहीं जाना, ये नहीं सोचना, कंट्रोल करो, ये सोचो, कभी कंट्रोल किया? कंट्रोल कभी नहीं किया। तो अभी बैठ करके बोल रहे हो कि तुमको ये नहीं सोचना, ये करो, वो करो, वो कंट्रोल में आएगा, लेकिन फिर थोड़ा सा उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। कभी किया ही नहीं जिंदगी में, अभी जाकर के बोल रहे हैं कि ये नहीं करो, वो मन करो, थोड़ा सा मुश्किल है। तो लेकिन उसको समझना जरूरी है कि मन सोचता क्या है, कैसे है। तो उसको डंडे से हम उसको सुधार नहीं सकते। मन एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे को आप कंट्रोल कैसे करते हो? 6 मास का बच्चा है, एक साल का बच्चा है, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? उसको क्यूरियोसिटी बहुत है, आग लाल लाल है, उसको हाथ लगाओ, देखू क्या है, तो उसको कितना बोलेंगे ना, तुम हाथ नहीं लगाओ, जल जाएगा हाथ, तो क्यूरियोसिटी, जलना क्या होता है, देखना है मुझे, तो वो क्यूरियोसिटी है। तो लेकिन जब उसको समझ में आ गया ना कि हाँ ये हाथ लगाने से जल जाएगा, जलना इसको कहते हैं, तो फिर वो कभी हाथ नहीं लगाएगा, है ना। समझाना बहुत जरूरी है, करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, ये बैठ करके बच्चों को जिस रीति से हम समझाते हैं उस रीति से समझाना होगा। और दूसरी बात है, क्या नहीं करना है उसके बारे में नहीं बोलना है। जैसे बंदर का मिसाल दिया, जो ना बोलेंगे तो उसी के तरफ मन जाएगा, है ना, क्या करना है उसी को हम बोलना है, उसी के बारे में बोलना है, उसी के प्रति हम डायरेक्शन हमें देना है, ये दो बातें। लेकिन जब आप शांति में बैठते हैं तुरंत मन जहां अनरिजॉल्व्ड बातें हैं ना तो वहां चला जाता है, वहां चला जाता है। तो फिर मन को बोलना है कि हाँ ये बातें मुझे रिजॉल्व करना है, वो समस्या है, मुझे देखना है उसके बारे में, लेकिन अगले आधे घंटे के लिए नहीं करते, आधे घंटे के बाद उसके बारे में सोचेंगे। ये थोड़ा मन को समझाए ना कि आप इनिशियली स्टार्टिंग में जब मेडिटेशन में बैठते लंबे काल के लिए नहीं बैठना, ये सोच के नहीं बैठना आधे घंटे के लिए मुझे मेडिटेशन में बैठना है, नहीं 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए शॉर्ट, क्योंकि आधा घंटा एकाग्र करना आपके लिए मुश्किल होगा, ये अभ्यास की बात है। जितना आप अभ्यास करते जाएंगे फिर ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में केवल 10 मिनट्स 15 मिनट्स काफी है। और 10 मिनट्स के लिए मन को समझाना इजी है, अगले 10 मिनट के लिए मुझे तुमको ये सोचना है बस, 10 मिनट के बाद इन बातों पर मैं सोचूंगी, ये अपने आप के साथ वार्तालाप करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के वो मानेगा, तब जाकर के आप फोकस कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि मन सूक्ष्म है, स्थूल चीज से डंडे से कर से वो कंट्रोल में नहीं आएगा, सूक्ष्म चीज से ही कंट्रोल में आएगा, माना वार्तालाप बात करना पड़ेगा उसके साथ, क्यों सोच रहे हो, नहीं अभी 10 मिनट के लिए तुम वो नहीं सोचो, ये सोचेंगे, है ना। तो वो अपने आप को बात कर के साथ बात करते हुए फिर, हाँ जी, हाँ वो क्या है, एक प्रकार से एकदम टेंशन लेस हो जाते हैं ना, टेंशन से मुक्त हो जाते हैं, तो इसलिए नींद आना शुरू होता है। तो इसलिए कहते हैं, कई लोग यहाँ कहते हैं, यहाँ इतने सालों से मुझे इंसोम्निया था, लेकिन यहाँ आकर नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि निश्चिंत हो गए ना, टेंशन से फ्री हो गए, तो नींद जरूर आएगा। लेकिन फिर बॉडी को अलर्ट रखना जरूरी है, बॉडी क्योंकि ओवर रिलैक्स हो जाते हैं ना मेडिटेशन करते समय, ओवर रिलैक्स होकर के बैठते तो भी नींद आएगा। और फिर फोकस देना जरूरी है, लक्ष्य लेकर के मेडिटेशन में बैठना बहुत जरूरी है, अगले 10 मिनट के लिए मुझे ये अनुभव करना है, लक्ष्य लेकर के बैठेंगे और अलर्ट होकर के बैठेंगे तो नींद नहीं आएगा, है ना। हाँ जी, वो बार बार हाथ उठा रहे उनका ले लेती हूँ पहले जी। नहीं जरूरी नहीं है, अगर आप फ्लो में हैं तो बैठ जाए ना, फ्लो में है तो बैठ जाइए, लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि हमेशा क्या होता है, कोई मुश्किल काम होता है ना तो आधा घंटा मेरा भारी लगता है, बाप रे आधा घंटा बैठना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में मन को थोड़ा फुसलाना पड़ेगा, ठीक है 10 मिनट बैठ जाओ, तो 10 मिनट बैठ गए तो आपको रस आने लगा तो बैठ जाइए, कैसे भी टाइम लिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मन को थोड़ा सा करने के लिए जरूरी होता है स्टार्टिंग। हाँ जी, वो बहन, हाँ जी, हाँ, डिस्टर्ब करने से हेडेक क्यों होता है, क्योंकि वो एक तो नेगेटिव एनर्जी, और दूसरी बात है हम नेगेटिव सोच रहे हैं, ऐसा क्यों कर रही है, तो वहां से भी नेगेटिव आ रहा है तो मैं भी नेगेटिव भेज रही हूं, तो वो दोनों मिलकर के वो हेडेक आता है, तो इसीलिए उसको फेस करने के लिए वो फिर पॉजिटिव सोचना जरूरी है, और पॉजिटिव सोचने के लिए शक्ति चाहिए, मेडिटेशन की शक्ति। तो ऐसा टाइम्स चूज करें तो ताकि फिर ज्यादा लोग डिस्टर्ब नहीं, जैसे सुबह सुबह वो लोग उठने से पहले आप मेडिटेशन में बैठ गए, तो ऐसे टाइम पे और टाइम चूज कर, क्योंकि फैमिली में जब रहते हैं तो फिर ये सारे इश्यूज तो आएंगे, तो इसलिए युक्तियुक्त, दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करना है तो हमारा काम भी हो जाए ना, जैसे रात को सब सो गए उस टाइम पे चूज कर लिया, या फिर कोई घर में नहीं है उस टाइम पे चूज कर लिया, तो अनियर बाय सेंटर पे गए वो फिर यूज हो जाए। हाँ जी हाँ जी वो पीछे जो हाँ जी हाँ वो तो ठीक है। हाँ मेडिटेशन रात को भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं मेडिटेशन। हाँ अच्छा टाइम मैं बता वो आपका रिस्पॉन्स देती हूँ। हाँ जी ओके वो भी अच्छा है ठीक है। मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम मेडिटेशन करने के लिए अमृत वेले का टाइम है 4 to 4:45। एक्चुअली अमृत वेला 2 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन फिर 2 बजे तो उठ नहीं पाएंगे ना, अगर उठेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन 4 बजे ऑफिशियली कहते हैं 4 to 4:45 अमृत वेले का योग आप कर सकते हैं। अगर कारण है आप 4 बजे नहीं उठ सकते, 6 बजे भी उठे तो भी आप आधे घंटे के लिए 10 मिनट के जब भी जैसे भी आपकी सुविधा है तो उस अनुसार आप मेडिटेशन कर सकते हैं। रात को सोने से पहले भी आप मेडिटेशन करके सोएंगे तो रात की नींद बहुत अच्छी आएगी आपको ठीक है। उसके अलावा दोपहर को टाइम मिला, शाम को टाइम मिला, रात को आधी रात को नींद खुल गई, बैठ गए मेडिटेशन करने, कोई मना साइड इफेक्ट्स या बैड इफेक्ट्स नहीं है मेडिटेशन की, प्राप्ति ही प्राप्ति है। और उनका जो ये है पहला कोई प्रश्न क्या था, वो स्नान वाला मैं कर लेता हूँ, वो प्रश्न पूछ ले कवर कर लेती हूँ। हाँ कंट्रोल आपको करना है क्योंकि आप राजा है, मैं स्वराज्य अधिकारी समझते हुए मन को कंट्रोल करना, मन को बहने नहीं देना है, मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम सोचते आए हैं कि मन अच्छा स्नान का ज्यादा इंटरेस्टेड है ठीक है, वो कवर कर लेती हूँ पहले। हाँ सुबह उठते ही अगर आप टॉयलेट नहीं गए है ना, बोवेल्स अगर क्लियर नहीं हुए तो फिर आप मेडिटेशन ऐसे ही मुंह धो करके आप बैठ सकते हैं, लेकिन अगर बोवेल्स क्लीन हो गए तो फिर आपको स्नान करना जरूरी है। क्योंकि जब मंदिर में जाते हैं तो स्नान करके जाते हैं राइट, तो यहां भले मंदिर नहीं है लेकिन परमात्मा से मिलने जा रहे हैं तो फिर वो शुद्धि बहुत जरूरी है। मतलब अगर बोवेल्स टॉयलेट जाते हैं तो फिर स्नान करके, स्नान भी इमीडिएटली आपको पूरी तरह स्नान करना, हम कभी कभी कहते हैं छोटा स्नान बड़ा स्नान। छोटा स्नान क्या होता है कि उठते ही बोवेल्स क्लीन हो गया तो पानी डाल करके आ गए, फिर बाद में जब अमृत वेला योग हो गया सारा हो गया एक्सरसाइज सब कुछ हो गया फिर लास्ट में पूरी तरह अच्छी तरह स्नान किया, वो भी कर सकते हैं। तो ये ठीक है फिजिकली अनफिट है। हाँ अगर फिजिकली अनफिट है बैठ नहीं पाते हैं वो लेट के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, जैसे बीमार है तो फिर बैठ नहीं पा रहे हैं तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं है ना, लेकिन अभ्यास पहले बैठ क्या करना जरूरी। हाँ किया जा सकता है, लेकिन त्राटक में क्या होता है पूरा अटेंशन वो फिंगर पे रहेगा, त्राटक यही है ना। हाँ इससे भी यही, इसको भी त्राटक कहते हैं, कैंडल के साथ भी वो त्राटक कहते हैं, लेकिन ध्यान पूरा कैंडल के साथ रहेगा है ना, तो कैंडल के साथ कनेक्शन नहीं ना, मेरा कनेक्शन वहां जाना है, वहां कनेक्शन जोड़ना जरूरी है। तो इसीलिए आंखों को स्थिर रखना जरूरी है, आंखों को जितना स्थिर रखेंगे एक जगह पर स्थिर रखेंगे तो फिर मन को एकाग्र करना इजी हो जाता है। हाँ जी हाँ यह बहुत अच्छा प्रश्न है। आंखों को एक जगह पर स्थिर रखना है, कहीं भी स्थिर रखिए, क्योंकि आंखों को जब इधर उधर कर रहे हैं तो मन को भी एकाग्र करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आंखों को एक स्थिर रखा, लेकिन मेरा ध्यान सारा यहां है, आंखों कैसे ले जाएंगे, मुश्किल है ना, आंखों को ले जाना मुश्किल है, यहां ऊपर ऐसे है ना। हम जब कहते हैं कि मैं आत्मा ब्रुकुटि के बीच में हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, तो फिर बुद्धि रूपी आंख से देखना है। मेडिटेशन में तीन शक्तियों को हम यूज करते हैं। एक है सोचने की शक्ति, सोचना शुरू करते हैं, पॉजिटिव सोचना, आत्मचिंतन करना, मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं प्रकृति के बीच में, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग, आत्मचिंतन। और दूसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में नहीं कहेंगे, इसको देखना कहेंगे। विजुअलाइजेशन इज समथिंग आर्टिफिशियल, जो नहीं है उसको विजुअलाइज करना, लेकिन यहां देखना कहेंगे, क्योंकि जो मैं हूं वहां, तो उसको देखने का अभ्यास करें। ये हम आर्टिफिशियल चीज को विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, जो वास्तविकता है उसको देखने का अभ्यास कर रहे हैं। माना देखेंगे कैसे, बुद्धि रूपी आंख से। जैसे अगर आपको यहां कहेंगे, आप यहां बैठे हैं अभी, आप अपने घर के किचन में जाइए, ग्लास उठाइए, पानी भरिए, पानी पीजिए, आप उसको विजुलाइज किया ना, विजुलाइज किया ना, देख पाए ना, महसूस कर पाए ना, देख पाए। तो ऐसे ही वो देखना इजी है, वो किस रूप से, किससे देखा आपने, बुद्धि से आपने देखा, किचन में गए, ग्लास भरे, पानी पिया, बुद्धि से देखा। ऐसे ही बुद्धि से ये देखना है कि हाँ, मैं आत्मा चमक रही, मैं इन आंखों से आपको देख रही हूं, लेकिन बुद्धि रूपी आंख से मैं अपने आत्मा को देख रही हूं, राइट। अभ्यास करते करते, बात करते हुए भी मैं अपने आप को देख सकती हूँ बुद्धि रूपी आंख से, है ना। और तीसरी बात है, एक है विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, आत्मचिंतन, दूसरा है विजुलाइजेशन या देखना, तीसरी बात है महसूस करना। अगर मैं ये कहती हूं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और शांति को महसूस करना, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मैं बोल रही हूं, लेकिन महसूस नहीं कर रही हूं, ये बात नहीं। ये तीनों जब साथ जाएगा ना, तो मेडिटेशन बहुत शक्तिशाली होगा, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट, सो सकते वो तो सोच सकते जाकर। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन लेंगे, तो अभी फिर उसके बाद अभ्यास करेंगे। हाँ जी, हाँ वो ये उसको बहने नहीं देना है, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं ना, विचार आ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, मैं क्रिएट कर रही हूं, मैं आत्मा उन विचारों को क्रिएट कर रही हूं, तो मैं उसके रचयिता हूं, तो आ रहे तो उसको बहने देंगे तो कहीं ना कहीं कंट्रोल लगाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा नहीं अभी इसके बारे में बंद करो, अभी ये सोचना है। अधिकारी बन करके, मास्टर बन करके उसको कंट्रोल करना शुरू करे, और जितना नेगेटिव विचार है उतना स्पीड उसका ज्यादा है, पॉजिटिव विचारों के स्पीड कम है, है ना। नेगेटिव जब सोचना शुरू करते फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है ना। ठीक है, चले, अब बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे, लेकिन बाद में कोई ना कोई बहनों को पकड़ लीजिए, बहनों के पास जा करके आप अपने प्रश्नों को ये कर सकते। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे आप सोचते हुए विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे और महसूस करने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स के साथ साथ अलर्ट भी रहें, बैकबोन स्ट्रेट रखें, दोनों पैर जमीन पे। अगर सुखासन में बैठ सकते कुर्सी पर कोई बात नहीं, लेकिन नहीं बैठ सकते दोनों पैर जमीन पे। और बैकबोन अलर्ट स्ट्रेट। गहरे श्वास लेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ। और आसपास के वातावरण से, विचारों से अपने मन और बुद्धि को विथड्रॉ करते हुए मन के स्क्रीन को देखना शुरू करें। भ्रुकुटी के मध्य में अपने आप को देखने की कोशिश करें। ब्रेन के बीचों बीच एक चमकता हुआ अजब सितारा। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप चैतन्य हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है। भ्रुकुटी के बीच में बैठकर मैं आत्मा आंखों द्वारा देख रही हूं। देखने वाली मैं आत्मा। प्रकृति के बीच में बैठकर मैं आत्मा कानों द्वारा सुन रही हूं। मुख द्वारा बोल रही हूं। अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा अलग अलग कर्म कर रही हूं, लेकिन करने वाली मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। मुझ आत्मा का निजी गुण शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा से शांति के प्रकंपन चारों तरफ फैल रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम निवासी है। मैं अपने मन और बुद्धि को परम धाम ले चलती हूं और वहां एक चमकता हुआ अजब सितारा, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है, अथा है, सागर है, अपरम अपार शक्ति है। मैं आत्मा उस पिता परमात्मा के अति प्रिय संतान, उनके सानिध्य में केवल मैं और मेरे पिता परमात्मा, ये जो संबंध है मेरा और परमात्मा का, जन्म जन्मांतर का संबंध, अनादि अविनाशी संबंध, हमेशा के लिए संबंध में पुनः इस संबंध के साथ परमात्मा के साथ कनेक्ट हो रही हूं। परमात्मा मेरे हैं, सारी दुनिया के लिए वो भगवान है, मुझ आत्मा के लिए वो भगवान मेरे पिता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा, मैं उनके अति प्रिय संतान मास्टर सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्तियां और प्रकाश। मुझ आत्मा में बह रहा है। मैं आत्मा उन शक्तियों को अब्सॉर्ब करती जा रही हूं, अपनाती जा रही हूं और मैं आत्मा बहुत लाइट होती जा रही हूं। सर्वशक्तिमान से शक्तियां लेते हुए मैं आत्मा लाइट हो रही हूं। मुझ आत्मा के अंदर जो कमी कमजोरियां हैं वो भस्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। मैं आत्मा शक्तिशाली हो रही हूं, प्रकाशमय होती जा रही। अपने स्थान प्रकृति के मध्य में फिर भी मैं परमात्मा के साथ निरंतर जुड़ी हुई हूं, निरंतर सर्वशक्तिमान से शक्तियों की किरणें लेते हुए पूरे संसार में दे रही हूं। परमात्मा की शक्तियां पूरे संसार में फैला रही हूं। कि हर आत्मा सुख शांति की अनुभूति करे, और परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़े, ओम शांति।